ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर बाबा हम बच्चों को इस भट्टी में बिठा करके, भट्टी में बैठे है ना, अथवा योग तपस्या में बैठे हैं, भट्टी कर रहे हैं, भट्टी में भी चार प्रकार की भट्टी है, पांच प्रकार की भट्टी है, और पांच प्रकार की भट्टी में मैं कौन सी भट्टी में हूं, एक भट्टी तो बहुत द्वापर से लेके कलयुग तक भट्टी चल रही थी, जिसको कहेंगे लोहार की भट्टी। लोहार की भट्टी पता है कैसी होती है? लोहार की भट्टी लोहे का सुधार करती है, पर हथौड़े मार के करती है। कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, अथवा ये कहें पश्चाताप की अग्नि में तप करके कई सुधर जाते हैं। संस्कार का सुधार होता है, व्यवहार का सुधार होता है, विचार भी सुंदर और श्रेष्ठ बन जाता है, पर पश्चाताप से, जिसको धर्मराज की भट्टी कहेंगे, गर्भ जेल की सजा भी बंद है भट्टी में। जैसे भट्टी में कोई चीज पैक हो जाती है, बाहर निकलने का साधन नहीं है, बंद है, तो द्वापर कलयुग में भी गर्भ जेल है, और उसमें आत्मा पश्चाताप करती है। तभी बाबा कहते हैं मुरली में कि जब वो आत्मा पश्चाताप करती है तो अंदर प्रेयर करती है कि मुझे छुड़ाओ, मैं फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। परंतु फिर बाहर आया तो वहां की वहां रही, तो सजाओं की भट्टी है, सफरिंग जिसमें है। इसीलिए मनुष्यात्माएं जन्म में आना भी दुख समझती हैं, जन्म में ही नहीं आना चाहती, जन्म और मृत्यु, मृत्यु के भय की भट्टी और जन्म में गर्भ जेल की पश्चाताप की भट्टी, जिसको बाबा गर्भ जेल धर्मराज की सजा कहते हैं। तो लोहार की भट्टी में सुधार होता है, पर मार से सुधार होता है। कर्मों का लेखा जोखा चुकतु होके धोबी की भट्टी भी है, धोबी की भट्टी में भी कपड़ा स्वच्छ होता है, अच्छा गर्म पानी चाहिए। धोबी की भट्टी फिर भी अच्छी, पुराने जमाने में भट्टी वो भी थोड़ा पत्थर से सटका मार के धुलाई होते थे कपड़े, अभी सुदर्शन चक्कर चला के कपड़ा धुलाई होता है। सुधार हो गया है। तो पहले कर्मों का, क्योंकि शरीर रूपी कपड़े को जैसे मैला, कर्म इंद्रियां जिस जिस संग में आई, जिस चीज के प्रभाव में आ गई, कभी दृष्टि मैली हुई तो कभी वाणी के बोल अशुद्ध निकले, कभी कर्म भ्रष्ट किया, तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान धोबी है, मैले कपड़े धुलाई करने आता है, तो कपड़ा भी बराबर धुलाई करता है। यानी ये शरीर रूपी जो कपड़ा है, इनकी भी धुलाई होती है रियलाइजेशन से, योग बल से और कर्म श्रेष्ठ करने से। आत्मा की भी शुद्धि, आत्मा की मैल भी उतरती है और कर्म इंद्रियां भी शीतल, शांत और शुद्ध होती हैं, क्योंकि यही कर्म इंद्रियां, चाहे इसी दृष्टि से किसी को नफरत की दृष्टि से देखे, किसको ईर्ष्या की दृष्टि से देखें, किसको वैर विरोध की भावना से देखें, किसको नीच भावना से देखें, किसको ऊंच भावना से देखें, दृष्टि में मैल भर जाता है, बोल में अपमान या अभिमान, अपमान से भी दूसरी आत्माओं से मान खत्म हो जाता है, उनके हृदय की भावना खत्म हो जाती है, शुभ भावना नहीं रहती, या तो डर रहेगा या नफरत रहेगी, या वो अवॉइड करेंगे, भाई डेंजरस व्यक्ति है, अपमान कौन सहन करे, दूर रहो, नजदीकी नहीं आएंगे। स्नेह का अनुभव न, दूसरी आत्माओं से स्नेह और सम्मान का अनुभव नहीं करेंगे, ये जैसे कि ऑटोमेटिकली दंड पड़ जाता है। अपमान अभिमान वश अपमान के शब्द बोलने से स्नेह और सम्मान समाप्त हो जाता है, न स्नेह मिलता है न सम्मान मिलता है, न समीपता का अनुभव होता है न विश्वास का अनुभव होता है, दूसरे लोग समीप भी नहीं आते, और कोई बात कहे तो फिर मानेंगे नहीं, विश्वास भी नहीं करेंगे। तो जो आत्मा को गुणों की गठड़ी मिलनी चाहिए, गुणों के गहने दूसरे द्वारा मिले, वो गुणों का दान नहीं मिलता। तो बाबा अब हम बच्चों को लक्षणों की मूर्ति बना रहा है, लक्ष्य सौंप दे रहा है, और लक्षण क्या है, श्री लक्ष्मी बनने का मतलब लक्षण अच्छे हों, जिसको हम कहेंगे गुण हमारे बहुत अच्छे हो, गुणों का ही दान करें, गुणों को ही ग्रहण करें, और गुण ग्राहक दृष्टि से नेचुरली स्नेह का संबंध जुटता है, जैसे गुण रूपी मोतियों की माला गले में पड़ जाती है। इसीलिए हमारा लक्ष्य क्या है, हर एक को गुणों का दान देना, परंतु गुणों का दान दे कौन सकेगा, देन और लेन का संबंध है। गुणों का दान दे वो सकता है जिसको गुण ग्रहण करना आता हो। अगर गुणों की कमाई नहीं की, जैसे ज्ञान धन इकट्ठा नहीं किया, बाबा ने कहा पढ़ाई नहीं पढ़ी, कमाई नहीं की, तो दूसरों को सुना कैसे सकेंगे, मंथन ही नहीं चलेगा, धन इकट्ठा ही नहीं किया, मक्खन बनाया ही नहीं तो खिलाएंगे कैसे, खुश रहेंगे नहीं तो खुशी बांटेंगे कैसे। यानी पहले अपने पास गुण ग्रहण करने की शक्ति, गुण उठाने की शक्ति, उसमें धारण, धारण करना दूसरी चीज है। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। गुण धारण करने में अपनी कमी और कमजोरी को खत्म करने को गुण धारण करने कहा जाता है। मानो हमारे अंदर, मेरे अंदर अशांति, अधीरज का गुण है, अवगुण है, अधीरता है, इम्पेशंस है। अब मैंने अपने पर अटेंशन देके मन ही मन में अंदर भट्टी विचार मंथन करके स्वयं की सेल्फ रियलाइजेशन करके भाई धीरज से बात करें। उतावलेपन में कड़वे बोल बोल दिए नहीं, मीठे बोल बोलने, मधुर बोल बोलने से दूसरी आत्माएं स्वतः ही स्नेह सम्मान देती हैं। क्यों? कि जब मधुरता, दूसरे का गुण ग्रहण किया ना, अब उनको कुछ रिटर्न में देना है ना ऑटोमेटिकली। तो जब हम एक है धारणा, धारणा का मतलब है मैंने अपनी कमी कमजोरी को चेंज करके उसके बदले में गुण धारण किया। दूसरा है किसी की विशेषता को एप्रिशिएट करके वो अंदर महिमा करना, स्वीकार करना, गुण ग्रहण करना। तो डबल फायदा हो गया ना, गुण ग्रहण करना, दूसरों से लेना गुण सीखना, मतलब उसमें हम आत्मअभिमानी अपने आप बन जाएंगे, मन की शुद्धि होगी हमारी अपने प्रति, तो शुद्ध विचार रहेगा ही सही, परंतु दूसरी आत्माओं के लिए भी सद्भावना, सत्य भावना होगी। क्यों? कि अब गुण को एप्रिशिएट करेंगे तब गुण देंगे ना, अगर गुण को एप्रिशिएट ही नहीं किया तो गुण कहां से देंगे? फिर देंगे भी सही तो किसी को इसी भावना से गुण का दान देंगे ना। तो जब हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य सोप है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का, तो कमी कमजोरी ना रहे और लक्षणों की मूर्ति बन जाने। इसलिए लक्ष्य सबसे पहले जो संपूर्ण निर्विकारी बनने का लक्ष्य है वो गुण ग्रहण करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य सोप से मन और मैला नहीं होता। गुण ग्रहण करेंगे तो मन मैला नहीं होगा ना, अब गुण ग्रहण करते हैं तो मन मैला होता है ना। दोष दृष्टि, दोष देखते हैं तो हम दूषित हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, अशुद्ध बन जाते हैं। दोष देखते देखते दूषित हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा को फिर बार बार ध्यान दिलाना पड़ता है, आत्मदृष्टि रखो, रूहानियत की दृष्टि रखो, मन और शुद्ध, मन को शुद्ध रखो, चित्त को शीतल और शांत रखो। तो हमारा और स्वच्छता की जरूरत जो है वो है हमारी वृत्ति में परिवर्तन आ गया। वृत्ति में भी परिवर्तन तो दृष्टि में भी परिवर्तन, शुद्धि आई ना। तो हम बाबा जो वाशरमैन है वो हमारे तन को भी स्वच्छ कर रहा है, कर्म इंद्रियों को भी शीतल शुद्ध कर रहे हैं, और साथ साथ ज्ञान के मंथन से, विचार सागर मंथन से विचार बदली होते हैं। विचार सागर मंथन से हर्षित चित, चित में चिंतन बदल जाता है ना, तो शुद्धि होती है। फिर तीसरी भट्टी है योग तपस्या में पकने की। ज्ञान मंथन करके भी शुद्ध करते हैं, विचारों को शुद्ध करते हैं, पर बाबा कहते हैं कि मैंने ये भट्टी रखी है, ये पांडवों का किला तैयार करने की भट्टी बनाई है। एक एक ईंट, एक एक ईंट की वैल्यू है। एक ईंट भी अगर कच्ची रह गई ना तो बिल्डिंग मजबूत रहेगी, बिल्डिंग कच्ची हो जाएगी। एक दो ईंटें अच्छा उसमें और फिर पानी आ गया तो मकान गिरने का डर। तो मजबूत जो ईंटें हैं, तो हमको बाबा इस भट्टी में तपा के जब पक्की ईंट बना देता है तो किसी चीज की छोटी छोटी बातों का असर हमारे पर नहीं होता। इसका मतलब सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। कच्ची ईंट है ना, कच्ची अवस्था है, तो क्या होता है, हाथ रखो तो हाथ का निशान पड़ जाएगा, कोई चीज उसके ऊपर पड़ी तो उसका खड्डा बन जाएगा, टेढ़ी हो जाएगी। कच्ची है, पक्की हो गई उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिट्टी का कप है, कटोरा है, कप प्लेट जो है पॉटर बनाता है, कच्ची है तो टेढ़ी हो जाएगी। एक बारी पक गई, फिर पॉलिश हो गई, फिर चाहे दूध डालो, चाहे पानी डालो, चाहे जूस डालो, धुलाई करो, लगा ही नहीं उस पर, दाग नहीं पड़े। तो पक गए ना हम, तो किसी के भी प्रभाव में, किसी की बात अच्छी हो या बुरी हो, ये जो बाबा कहते हैं ना इम्प्रेस्ड हो गए, या किसी बात में डिप्रेस्ड हो गए, ना इम्प्रेस्ड होंगे ना डिप्रेस्ड होंगे, क्यों कि अंदर अवस्था पक्की हो गई है। तो योग में हम भट्टी में क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, बाबा से तो प्यार करना ही है, योग माना बाबा से प्यार, परंतु सबसे ज्यादा प्यार किससे होना चाहिए, किससे सबसे ज्यादा प्यार, शिव बाबा से प्यार है, ब्रह्मा बाबा से प्यार, दादियों से प्यार, ज्ञान से प्यार, धारणा से प्यार, किससे प्यार। तो सबसे ज्यादा प्यार चाहिए अपनी अवस्था से, अपनी अवस्था को सुधारने का। ये सबसे बड़ी अपनी सेवा जो है ना, जो कल बाबा ने कहा श्रेष्ठ सेवा सबसे ऊंची सेवा है, बिगड़ी को बना लेना श्रेष्ठ सेवा है, संस्कारों को सुधारना श्रेष्ठ सेवा है, बिगड़े हुए मूड को ठीक कर देना। तो ये मूड क्यों खराब होता है, अवस्था खराब हो गई ना, मूड खराब हुआ मतलब क्या, अवस्था खराब हुई ना। बाबा कहते हैं मूड खराब होना माना मूड मती, मूड मती यानी मोटी बुद्धि, समझदार नहीं बेसमझ। तो अभी हमको हमारा लक्ष्य जो है गुणों की मूर्ति बनना है, परंतु दूसरों से भी गुण ग्रहण करने के साथ साथ अपने जो आत्मा के जो गुण है, वो जो बिगड़ विकार बन गए थे, गुण अवगुण बन गए थे, और ना केवल अवगुण बन गए थे, विकार बन गए थे, बिगड़ गए थे। जैसे पित्त का रोग बिगड़ जाती है ना, तबीयत क्यों बिगड़ी, भाई ठंड में हमने ध्यान नहीं दिया, गर्मी में हमने खान पान पर या ऐसे रोज अपनी चीज में खान पान पर ध्यान नहीं दिया, किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, अवस्था तबीयत बिगड़ गई। तो ऐसे अगर हमने अपनी अवस्था पर ध्यान नहीं दिया, अवस्था बिगड़ जाएगी ना। तो सबसे ज्यादा प्यार बाबा से प्यार भी तब रहेगा जब अवस्था में सुधार आएगा। अवस्था ठीक रखेंगे संस्कार ठीक होते जाएंगे। संस्कारों के सुधार से पहले बार बार, क्योंकि अपने संस्कार तो असर डालते हैं पर दूसरों के विचार व्यवहार भी, तो इसलिए हम पक्के जैसे चाइना पॉट है ना, सुंदर भी है, पॉलिश भी हो रही है, तो बाबा योग से उसकी पॉलिश कर रहा है, हमारी लगन की अगन से हमको पक्का कर रहा है। जितना हम योग युक्त होंगे हम दूसरे आत्माओं के संस्कार से, विचार से, व्यवहार से असंतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान हमको पक्का है। साक्षियों के बाबा को साथी बना लिया ना योग में, अब बाबा को साथी बना लिया तो हर चीज को साक्षियों के देख रहे हैं, साक्षियों के देखने की शक्ति आ गई। जब साक्षियों के देख रहे हैं तो ड्रामा देख रहे हैं तो अवस्था खराब नहीं होती, समझते हैं ये एक ड्रामा है अथवा फिल्म चल रही है, है सही सामने सीन है पर मेरे से कनेक्टेड नहीं, मेरे पर इफेक्ट नहीं करेगी। तो बाबा हम बच्चों को मजबूत बना रहे हैं अवस्था में मजबूत, और अवस्था मजबूत है तो भगवान हमको पढ़ा रहा है इसका हम सबूत देते हैं, और उसी हिसाब से हर्षित चित रहते हैं तो सपूत बनते हैं, क्योंकि अधिकारी बन जाते हैं ना, अवस्था ठीक है तो सपूत बच्चे हैं और धारणा का सबूत दे रहे हैं। तो सपूत बच्चों का मजबूत, सपूत किस बात में, भाई बड़ा मजबूत है अवस्था में, बड़ा मजबूत वो बाबा का लगा बच्चा, सगा बच्चा। अवस्था अच्छी है तो योग टूटेगा नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर से जोड़ने की। क्या होता है अवस्था कच्ची होती है, किसी ने कुछ कहा मन खराब हो गया, अब फिर को फिर ज्ञान का मंथन, योग खत्म, योग कम हो जाएगा, ज्ञान का मंथन करना शुरू करेंगे फिर भी वही बातें जो दूसरे की असर है वही बार बार असर करता रहेगा, परंतु अवस्था ही मजबूत है तो योग जल्दी लग जाएगा ना। अगर थोड़ा भूल से भूल भी हो गई ना खाते पीते उठते बैठते, नेचुरली मूड ऑफ हुआ ही नहीं, हर्षित चित रहेंगे हर्षित मुख रहेंगे तो मजबूत बनना है, सपूत बनना है, मजबूत बनना है, सपूत बनना है, सबूत देना है कि हाँ हम पक्के हैं, भट्टी में पक रहे हैं, ये कहते हैं भट्टी है पक रहे हैं। तीसरा फिर भट्टी है, योग की भट्टी में बैठे हैं, ये सुनार की भट्टी है, और थोड़ा फाइन चलते जाते हैं तो अंदर में जो चली गई है ना संस्कारों में, संस्कार का सुधार, श्रेष्ठ सेवा, तो जैसे सोने में खोट मिल जाती है, अंदर मिल गई ना, कपड़े में भाई दो मिट्टी बाहर का धूल पड़ी ना, कोई ऐसे नहीं कोई उठा के किसने डाली, सारा दिन भाई अच्छा सफेद कपड़ा पहना था, कुछ कोई कुछ किया भी नहीं फिर भी कपड़ा मैला हो गया, या तो अपने पसीने से बदबू आने लगी या फिर मैला हो गया, मैला कहां से हुआ, वातावरण पोल्यूशन, तो देह अभिमान में हम पोल्यूशन से कपड़े को मैला करते हैं, जिसमें हमको हम चाह के नहीं कर रहे, ऐसे नहीं उठा के मिट्टी मल रहे हैं, ऐसे नहीं कोई उठा के मैला कपड़ा कर रहे हैं, पर वातावरण, उस वातावरण के प्रभाव में कभी दृष्टि कभी वृत्ति कभी व्यवहार कभी किसी के संबंध संपर्क में आते उनका प्रभाव, वो वातावरण से मैले होते हैं, धुलाई हो गई सहज, परंतु अंदर जो सोने में खोट मिल गई ना उसको कैसे निकाले, उसके लिए बाबा फिर कहते हैं बिल्कुल न केवल अशरीरी होकर के बैठो, अव्यक्त स्थिति से भी ऊंचे एकदम निराकारी बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। जब मैं देह से न्यारी आत्मा अशरीरी हूं तो शरीर शरीर में रहते अशरीरी हूं, और अशरीरी अवस्था से फिर अव्यक्त अवस्था, व्यक्त भाव नहीं, शरीर में आत्मा सोल कॉन्शियस हो गई, अशरीरी माना शरीर के ऑर्गन्स अभी मुझे अपनी तरफ खींच नहीं रहे हैं, ये जो मेरे ऑर्गन्स हैं इसको मैंने कंडीशन कर लिया, जैसे एयर कंडीशन है वैसे ट्रेन में जा रहे हैं, कपड़े मैले हो जाएंगे, सेकंड क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, धूल मिट्टी पड़ रही है, एयर कंडीशन में ट्रेवल किया, ट्रेवल तो वही जर्नी किया, अब एयर कंडीशन में कपड़े मैले नहीं हुए। ऐसे मैं अपनी स्टेज जो है ना, मन की अवस्था, कंडीशन मेरा अवस्था एयर को सेट कर दिया ना, सिस्टम को सेट कर दिया जो, तो उससे प्रूफ, एनवायरमेंट प्रूफ बन गए ना। तो ये योग के मंथन से, बाबा से, रूरियान से, अव्यक्त स्थिति में जैसे कि हम प्रभाव प्रूफ बन रहे हैं। आप देखेंगे जब बाबा अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो साकार में बैठे हैं ना, गुलजार दादी के रथ में बैठे हैं तो साकार तन में ही तो बैठे हुए हैं ना। निराकार अव्यक्त, हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं परंतु बैठे तो साकार में, जैसे निराकार ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, अभी निराकार अव्यक्त गुलजार दादी के साकार तन में आते हैं, बोलते हैं तो मुख यूज करते हैं, दृष्टि दे रहे हैं तो साकार आंखें है ना। अभी कुछ भी हो रहा है ना, स्टेज पर हो रहा है, सभा में कुछ हो रहा है, ये बाबा इसके प्रभाव में नहीं आते। आपने देखा होगा कितना भी स्टेज पर भी एक्टिविटी चल रही है, बाबा प्यार से टोली देना चाहते हैं परंतु जो मैनेज करने वाले हैं, स्टेज मैनेज करने वाले हैं, सारे बातों की भीड़ को मैनेज करना है, तो वो बाबा के हाथ में टोली है, देना चाहते हैं फल, देना चाहते हैं फल, सामने रखा है, उठा करके कोई ने रख दिया कि नहीं तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर तो बाबा की आगे लाइन लग जाएगी, और बाबा एकदम न्यारे हैं। हम लोगों को थोड़ा प्रभाव पड़ता है, अरे बेचारा आया है, इसको अभी तो टोली हाथ में, तो बाबा क्या है, इनको तो देने दो। बाबा को कभी सदकर, आप बाबा के चेहरे से जरा भी नहीं होएगा, जैसे उस चीज का भी प्रभाव नहीं है, किसी दूसरी चीज का भी प्रभाव नहीं है, शोर मच रहा है, एक्टिविटी बहुत चल रही है, बाबा का ध्यान उसमें नहीं जाता। यानी अपने आप की स्टेज को कंडीशन कर दिया ना, किसके प्रभाव में नहीं। तो अव्यक्त स्थिति यह है कि हम एनवायरमेंट प्रूफ बन जाते हैं, जैसे फायर प्रूफ कपड़ा पहनो, फायर तो है पर फायर प्रूफ कपड़ा पहनो तो कपड़ा नहीं लगा ना, आग बुझाने वाला फायर प्रूफ ड्रेस पहन करके जाता है, आग में कूदता है तो भी आग नहीं लगती ना। वाटर प्रूफ है, पानी में गया भी सही, चीज गई भी सही, खराब नहीं होती, वाटर प्रूफ है। तो हमारी स्थिति परिस्थिति के प्रभाव में ना आवे, इतने पक्के तो हो गए, परंतु इसमें हमारी वृत्ति और दृष्टि में अव्यक्त भाव, जो बाहर का प्रभाव भी नहीं पड़ा परंतु जो पहले पड़ चुका हुआ है, वो निकले कैसे? सुनार की भट्टी चाहिए, संस्कारों को परिवर्तन करने का, जो मैल फंस गई है ना, तो मैल के फंसने के लिए बाबा फिर क्या कहते हैं, अब मैल को, डॉक्टर को जो इसको सुनार को खोट निकालना है तो जेवर को गलाना पड़ता है। तो हम जो बैठे हैं ना, खाली अशरीरी होके नहीं बैठे, खाली अव्यक्त होकर के नहीं बैठे, इस फिजिकल फॉर्म से एकदम अलग अंडाकार स्थिति में, ज्योत स्वरूप स्थिति में, बीज रूप स्थिति में, अपने मूल स्वरूप स्थिति में, जिसको निराकार स्थिति, अशरीरी, अव्यक्त, फरिश्ता, निराकारी स्थिति। यानी ये जो देह का जो कपड़ा है ना, भान है, वो है परंतु इस पर मेरा ध्यान नहीं है, आइडेंटिटी चेंज हो गई ना, गल गया ना, जेवर गले तब खोट अलग हो गए, तो एकदम निराकारी बीज रूप स्थिति तो प्यार से उसमें मार नहीं पड़ती। ये योग युक्त स्थिति में बाबा को प्यारे लगते हैं। ज्ञानित्व आत्मा, योगित्व आत्मा को बाबा प्यारे लगते हैं। तो बाबा बहुत प्यार से, जैसे सुनार है ना, प्यार से उसको अलॉय को निकाल देता है ध्यान से। बाबा का ध्यान चला जाता है कि इस आत्मा को कैसे शक्ति देनी है। संस्कारों का सुधार होता है, संस्कार में वो मैल भर गई है ना, हमारे अलॉय मिक्स हो गई है। फिर है रंगरेज की भक्ति, संग के रंग की। शुद्ध बन गए ना तो वही संग स्वच्छ बन गया, कपड़ा साफ हो गया तो रंग जो रंगेगा ना, धब दाग नहीं पड़ेगा, चमक आ जाएगी। तो संग के रंग की भट्टी, तो ये हम अनेक आत्माएं इकट्ठी बैठ करके, फिर बाबा सत्य के संग में बैठे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम के संग में बैठे हैं, सतगुरु के संग में बैठे हैं, सत्य के रंग में रंगे हुए हैं। तो सत्य खंड जो हमारा असली घर है, सच्चा घर है, उसकी शांति और पवित्रता, और सतयुग की पवित्रता, सुख शांति और आनंद, वो सब गुणों से आत्मा फिर से जैसे न रंग गई, उसमें चमक आ गई। तो अभी हम इस भट्टी में किस एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे स्टेप में, तो जब ईश्वरीय रंग में रंग गए, तो जिसको भी हम अपना संग देंगे ना, उस रंग में वो रंग जाएगा ना। पर बाबा के संग के से रंग से, जैसे दूसरा को संग जो है वो अवस्था को बिगाड़ता है, तो हमारा सच्चा सत्य संग, हमारा संग दूसरों की अवस्था को सुधार देगा ना। जैसे सुधार बिगाड़ता है, रंग बिगाड़ता भी है तो सुधारता भी है, तो ये संग उद्धार कर देगा, इस संग श्रृंगार कर देगा, तो हम भी श्रृंगारी हुई मूरत ऑटोमेटिकली फिर से वही चमकदार बन जाएंगी। सोना बन गए तो बाबा हीरा जड़ देगा ना उसमें, हीरा तो संगम युग का हीरा तो है, पर हीरा कहाँ रखे, लोहे पर थोड़ी डालेगा। लोहे से चलो कर्मों का हिसाब किताब खत्म किया, पर हीरा तो नहीं जड़ा ना उसमें, कपड़े पर तो नहीं हीरा लगेगा, चलो साफ भी हो गया। सोना बन जाता है ना, तब उसमें सोने को बेस चाहिए हीरा, हीरे को बेस सोने की चाहिए। तो ये संगम युग पर बाबा हमको हीरा बना रहा है, मजबूत बना रहा है। इतना तो इतनी अवस्था हमारी मजबूत हो, कौड़ी से हीरे बन गए हम, ये परिवर्तन की भट्टी है। उसमें क्या हुआ कि हमारी अवस्था जो बनी ना, वो हमारी लाइफ बन गई ना। फिर जब लाइफ ही सुंदर बन गई ना, तो तभी बाबा ने कहा था पुरुषार्थ क्या करना है, जीवन बनाना, किसी का जीवन बनाने से पहले अपना जीवन बनाए ना, लाइफ बनाने का। तो सेवा होती है, एक होती है संदेश देने की सेवा, दूसरी है बाबा के साथ संबंध जुड़ाने की सेवा, तीसरी है लाइफ से लाइफ बनाने की सेवा। तो जब हम योग युक्त रहेंगे, ज्ञान युक्त रहेंगे, धारणा युक्त रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरे को प्रेरणा मिलेगी ना, संग का रंग लग जाएगा, हमारे संबंध से उनको बाबा के साथ संबंध जुड़ जाएगा। इसलिए ये भट्टी मजबूत बनाने की, हीरे तुल्य, कौड़ी से हीरे तुल्य बनने की भट्टी है। फिर हीरो बन के पार्ट प्ले करें, पैदा तो शक्तिशाली बन जाएंगे ना, सर्वशक्तिवान के संग से शक्तिशाली बन जाएंगे, इसलिए बैठिए। ओम शांति।